بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، देखो कल जो बात पढ़ी गई थी उसी को दोबारा आज लौटाते हैं। बहुत वो आवाज थोड़ी कट हो गई थी तो जबान के बारे में बात चल रही है, जबान की हिफाजत। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हर वक्त हमारी जबान जो है चलती रहती है। इसलिए फरमाया जबान जहन्नम से निकालने वाली भी है और जहन्नम में ले जाने वाली भी है। जबान जहन्नम से निकालने वाली भी है और जहन्नम में ले जाने वाली भी है। इस जबान के खालिक और मालिक की तरफ से इतना मुतालबा है कि जबान को जरा संभाल कर इस्तेमाल करो और उसको गुनाहों के कामों में इस्तेमाल मत करो। तो कैसे जहन्नम में ले जाने वाली है कि जबान के जरिए गीबत होता यह है कि इंसान ये भूल जाता है कि मुझे कैसी अजीम शान नेमत मिली हुई और किसने ये नेमत दी है और किस काम के लिए दी है, ये सब बातें भूल जाता है। उसका नतीजा होता है कि वो दिन रात सुबह से लेकर शाम तक इस जबान को बेधड़क इस्तेमाल करता है और वो ये समझता है कि मैं जायज काम कर रहा हूं। लेकिन जब जायज कामों के अंदर भी जबान को बेधड़क इस्तेमाल किया जाता है तो उसके नतीजे में कुछ खराबी तो जरूर आ जाती है। इसलिए फरमाया बातों जबान पर कंट्रोल करो, क्योंकि चार मुजाहदा थे। एक मुजाहदा कम खाने का, कम सोने का, कम बोलने का और कम लोगों से मिलने का। तो इसलिए फरमाया कि जबान को जायज कामों में भी कम से कम बोलो, क्योंकि जायज काम बोलते बोलते जबान फिसल जाएगी और नाजायज काम हो जाएंगे। इसलिए फरमाया बिला जरूरत न बोलो। फिर उस पर हजरत मियां साहब का एक वाकया था कि उन्होंने बताया था कि चलो हम अरबी जबान में बात करेंगे, हालांकि अरबी में न वो माहिर न हम माहिर। तो उसकी वजह क्या थी कि अरबी जबान जब बोलेंगे आपस में तो जाहिर बात है कुछ न कुछ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि बोलने जाएंगे तो अल्फाज ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन सा अल्फाज, और वो भी कम से कम अल्फाज लाएंगे क्योंकि आता नहीं है। जी, तो ये थारी सारी बातें चल रही थी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो बात करते थे वो बिल्कुल पॉइंटेड बात, उसमें फजूल लफ्ज नहीं होता था। जी, दूसरी बात यह कि अगर पढ़ा लिखा आदमी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को जरा गौर करके देखे तो ये नजर आएगा कि हजरत का कलाम ऐसा टिका हुआ होता है कि उसमें न तो एक लफ्ज जायद होता है न कम होता है। इसलिए बाज औकात उनको अपना कलाम हुदूद के अंदर रखने के लिए, अपनी बात को हुदूद के अंदर रखने के लिए कोई ऐसा लफ्ज नहीं मिलता जो आसान हो। इस वजह से वो बाज औकात अपने कलाम में मुश्किल अल्फाज ले आते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि बात हुदूद के अंदर रहे। जी, हुदूद के अंदर रहे, इसलिए वो ऐसे अल्फाज लाते थे जिसमें मानी ज्यादा अल्फाज कम। तो फरमाया देखो ज्यादा बोलना ये अच्छी अलामत नहीं है। हमें जो बात करनी है फौरन उस पॉइंट पर बात करो, उस पॉइंट पर जवाब दो और बस खत्म करो। मेरे वालिद माजी हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह एक मलफूज सुनाया करते थे कि हजरत ने फरमाया कि खुदराई बहुत बुरी बला है। यहां से शुरू हुआ था खुदराई, यानी अपनी मर्जी से चलना, अपनी मर्जी से हर काम करना, ये बहुत बुरी बला है। यानी हमेशा सिर्फ अपनी राय पर भरोसा करना और सिर्फ अपने ऊपर एतमाद करके हर काम का खुद ही फैसला कर लेना, ये बहुत बुरा है। लिहाजा हर काम से पहले मशवरा जरूर लिया करो। और फरमाया कि जब तक जाबते के बड़े मौजूद हो एक तो बड़े होना और एक जाब्ते के बड़े, जाब्ते के बड़े, एक तो बड़ा है कोई भी हमसे बड़ा, उम्र में बड़ा हा? और इस तरीके से माल में बड़ा, आइडिया भी बना, डिग्री में बड़ा, वो भी बड़े हैं। जाब्ते के बड़े यानी जो वाकईतन जिनको अल्लाह ताला ने बड़ा बनाया है दीन के एतबार से, जिनको मकबूलियत दी है, फरमाया उनसे मशवरा करो। अब देखिए ये नहीं फरमाया कि जब तक बड़े मौजूद हो, बल्कि फरमाया कि जब तक जाब्ते के बड़े मौजूद हो। फिर खुद ही इस लफ्ज के बढ़ाने की वजह बयान फरमाई कि जाब्ते के बड़े इसलिए कह रहा हूं कि हकीकत में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो अल्लाह ही जानता है। देखो तो उन्होंने एक जुमला लिया, क्या जाब्ते के बड़े मौजूद हो तो उनसे मशवरा करो, बस। अब इससे बहुत कुछ आ गया, तो जाब्ता का लफ्ज लाए अल्फाज को समेटने के लिए, बातों को कम करने के लिए। तो फरमाया जाब्ते के बड़े कौन, कौन छोटा कौन बड़े तो अल्लाह ही जानता है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, बड़ा वो है जिसको अल्लाह ताला नवाज दे, जिसकी मगफिरत फरमा दे और जिससे खुश हो जाए, ये है बड़ा। ये नहीं कि जो शख्स उम्र में बड़ा है, मर्तब में बड़ा है, फुला फुला कामों में बड़ा है, वो जरूर अल्लाह ताला के यहां भी बड़ा होगा, ये जरूरी नहीं। लेकिन दुनिया के अंदर जाब्ते में अल्लाह ताला ने कुछ मर्तबे बना दिए हैं, मसलन बाप बेटे से बड़ा है, उस्ताद शागिर्द से बड़ा है, मुरीद पीर मुरीद से बड़ा है। इसलिए हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब तक जाब्ते के बड़े मौजूद हो उनसे मशवरा किया करो, जाब्ते के बड़े हो। और जब जाब्ते के बड़े मौजूद न रहे, यानी कोई ऐसा नहीं है, जैसे वालिदैन नहीं है, वालिदैन भी तो बड़े हैं, नहीं है औलाद के लिए, तो फिर मशवरा करे। फिर उसके बड़े कौन होंगे, जैसे चचा है तो वो उसके बड़े हो जाते हैं, अगर उनसे नेक है तो उनसे करे। तो बड़े मौजूद उनसे मशवरा किया करो, और जब जाब्ते के बड़े मौजूद न रहे तो अपने बराबर वालों से मशवरा किया करो, और जब वो भी न रहे तो अपने छोटों से मशवरा किया करो, लेकिन मशवरा करके काम करो। पहले तो फरमाया जो दीन में बड़े उनसे करो, वो न रहे तो फिर अपने बराबर वालों से करो, वो न रहे तो अपने से छोटे से भी मशवरा करो। अल्लाह कबीर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो बड़े हैं, या तो वही के जरिए से बात करते थे, है कि नहीं, क्योंकि उनके बड़े तो सबके बड़े अल्लाह है, तो वो खामोश रहते थे, जब वही से कोई बात आती थी तो बोलते थे, या तो फिर वही न होती तो फिर अपने छोटे से मशवरा करते थे, सहाबा को जमा करते, बोले इसको क्या करना है, तो इसको कहते छोटे से, तो सहाबा तो उनके सामने छोटे ही है, उनसे मशवरा करते थे। और सहाबा भी हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, तो जाहिर बात है वो उस वक्त के तमाम मुसलमानों के बड़े हैं, लेकिन फिर भी अपने यहां नीचे वालों को जमा करते थे और उनसे जमा करके मशवरा करते थे, भाई बताओ इस काम में क्या करना है। यहां तक कि उनकी सैलरी भी मशवरे से तय होती थी। तो सैलरी कम से कम तय हुई है, तकवा तो देखो बीवी ने उसमें से एक 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 पैसा बचा बचा के रखा, और एक दिन मीठा बना लिया, पूछा ये कहां से पैसा लाए, फरमाया कोई पैसा कहीं इसी में से थोड़ा बचाया है, और आज जी चाहा कि आपको एक मीठा खिला दूं, तो फरमाया उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इतने इसके बगैर भी चल सकता है। तो फरमाया उस बैतुल माल से जो उनको सैलरी मिलती थी उसमें से उतना भी कम कर दिया, ये था हाल, उतना भी कम कर दिया, बोले इतना भी नीचे। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की सैलरी मुतय्यन थी, वो अपने सीधे साधे कपड़ों में रहते थे, लोगों ने मशवरा किया कि हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाना हजरत उमर से बात करना को आसान थोड़ी था, तो उन्होंने उनकी बेटी के पास गए और कहा जाकर, फिर हजरत बेटी ने उनसे कहा कि आपकी सैलरी था कौन लोग थे मुझे पता चल जाए, उनके मार मान के चेहरों को बदल दो। तो देखो हर चीज मशवरे से तय होती थी, और वो कम से कम पर जिंदगी गुजारा करते थे। तो बड़े न रहे तो अपने छोटों से मशवरा कर लिया करो। अगर हम और आप बोलते तो सिर्फ ये कहते कि बड़ों से मशवरा कर लिया करो, हम और आप कहते भाई बड़ों से नहीं, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जबान से लफ्ज इस तरह नहीं निकला, क्योंकि दूसरों को बड़ा कह देना तो तस्किया अल्लाह है। इसलिए उन्होंने एक लफ्ज बढ़ाकर फरमाया कि जाब्ते के बड़ों से मशवरा किया करो। जब अल्लाह ताला तबीयत में एतदार अता फरमा देते हैं तो फिर मुंह से और कलम से जो लफ्ज भी निकलता है वो टिका हुआ निकलता है, पॉइंटेड निकलता है। जी न एक इंच इधर होता है न एक इंच उधर होता है, यही हाल जबान का होता है, यही हाल कलम का होता है कि जबान भी अल्फाज सही निकालती, फिर अगर वो लिखते भी है तो लिखने में भी जैसे आजकल कलम नहीं है लेकिन टाइपिंग है, उंगलियां यूं 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 हिलाते हैं ना, तो वो हमारा कलम है, उंगलियां कलम बन गई है। तो फरमाया उसमें भी अगर किसी को कोई बात लिख रहे हो तो उसमें भी जायद लफ्ज न हो और तकलीफ देने वाला लफ्ज न हो, यही हाल कलम का होता है। लिहाजा जब आदमी तहरीर लिखे तो तहरीर के अंदर यह ना हो कि आदमी जोश किताबत में हुदूद से तजावुज कर जाए, लिखने के जोश में जरूरत से ज्यादा कलिमात इस्तेमाल कर ले, बल्कि जो कलमा लिखे वो सोच समझ कर लिखे। इस गरज के लिए हजरते सुफिया किराम फरमाते हैं कि कम बोलो। जब शुरू में इंसान इस तरीके में कदम रखता है तो सबसे पहले काम करना ही पड़ता है, क्यों कि जब तुम अपनी इसलाह कराने के लिए कदम बढ़ाओगे तो उसके अंदर तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा कि बोल में कमी करो। इसीलिए हमारी दावत के अंदर भी जमाते जब जाती है क्यों जाती है, इसलाह के लिए जाती है, इसलिए उनसे कहा जाता है कि चार कामों को कम से कम करना है। बोलना है तो बोलने की भी बता दिया, चार काम ज्यादा से ज्यादा करना है और चार काम कम से कम करना है। उसमें जो कम करना है उसमें एक बात है कि आपस की बातचीत जितनी जरूरत है उससे भी कम करो, ये हिदायत है, क्योंकि इसलाह के लिए चीज की जरूरत है। लेकिन आजकल होता क्या है कि हम जब जाते हैं अल्लाह के रास्ते में तो कुछ बोलने का तो आता नहीं है, न छह सिफात हमने याद किए हैं, न कोई दावत देना आता है, तो क्या करते हैं, जरा सा तालीम से फारिग हुए कि आपस में बैठकर घंटों बातें करते, घंटों बातें करते। जो कम से कम करने को कहा था वो सबसे ज्यादा हो रही है, तो अब इसलाह कैसे होगी बताओ, इसलाह कैसे हो, क्योंकि सोना ज्यादा है और बातें ज्यादा है और खाना भी ज्यादा हो रहा है। हालांकि खाने में कम से कम वक्त लगाओ, क्या मतलब, जरूरत का तो खाना है पेट भर के, लेकिन उसमें डिशेस नहीं बनाए, वो तो घर के लिए रखो। जब अपनी इसलाह के लिए बाहर निकले हो तो जो कम से कम और जल्दी से जल्दी पक जाए उसके अंदर अपना वक्त लगा लो। नहीं बोले आज तो हम चौमा खाएंगे और आज तो बिरयानी बनाएंगे और वो भी बिरयानी बोले हैदराबादी बिरयानी और पता नहीं कहाँ कहाँ की, अब सारा वक्त पकाने में जा रहा है तो उसको खाने में गिना जाएगा। भाई निकले तो इसलाह के लिए, तो इसलाह के लिए निकले तो जो कम से कम खाना मिल जाए खा लो। अब उसमें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, जिंदगी तो गुजर जाएगी, मर तो नहीं जाने वाले है, घर पे जाकर पसंद का खा लेंगे। नहीं, खाने में बेहतरीन खाना बनाना और फिर सोने में भी सबसे ज्यादा सोना, भी घर पे भी इतना नहीं सोते थे जितना अल्लाह के रास्ते में सोते, और बातों भी माशाल्लाह। तो जो कम से कम करने के काम थे वो ज्यादा से ज्यादा हो गए, और दावत इल्लाह ज्यादा देनी थी वो तो सिर्फ गश में गए तो आधा घंटा जो गश किया उसमें भी एक ही ने बात की है और बाकी सारे खामोश थे, बस उससे ज्यादा दावत किसी ने नहीं दी, उससे ज्यादा किसी ने इनफरादी दी न कहीं दी। तो ये होता है, तो फिर इसलाह कैसे होगी, तो इसलाह के लिए इसको कम कर लो, तो ये भी एक इसलाह है। तो जाहिर बात है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल बताया, जब भी इसलाह के लिए इंसान कदम उठाएगा तो उसको ये चार मुजाहदात में कुछ न कुछ कमी करनी पड़ेगी। हर कौल और हर फैल इख्तियारी किसी न किसी गायत के लिए मतलूब होता है, ये उनका जुमला था, बस हर काम और हर बात में सोचना चाहिए कि इसकी गायत क्या है। जिस काम और जिस बात की कुछ गायत न हो वो फजूल है, और गायत मालूम हो मगर मुफीद न हो वो भी फजूल है, और अगर वो गायत कोई जरर हो लाजिम या मुतादी तो वो कलाम या बात मुजीर है। अब आगे समझो, फरमाया कि जब भी कोई बात करो तो एक लम्हा के लिए थोड़ा सोच लिया करो, थोड़ी देर के लिए सोच लिया करो कि जो बात मैं करने जा रहा हूं उसका मकसद क्या है, गायत का माना इसका मकसद क्या है, क्यों बात कर रहा हूं। अगर मकसद सही है और शरीयत के मुताबिक है तो ठीक है, बात कर लो, लेकिन अगर मकसद सही नहीं, या मकसद है लेकिन शरीयत के मुताबिक नहीं, या इस बात का न तो दुनिया में कोई फायदा है न आखिरत में कोई फायदा है, तो फिर बिला वजह जबान को उसमें मुलव्वस न करो, फजूल बातें हो जाए, बिला वजह जबान को उसमें मुलव्वस न करो, यानी उसमें गंदी मत करो। और आज हमें तो फजूल बातें तो कुछ ना कुछ निकल ही जाती, मैं इसकी मिसाल दिया करता, मैंने क्या होती है, बोले इस साल तो गर्मी बहुत हुई, अब बताओ इससे कोई दुनिया का फायदा, कोई आखिरत का फायदा, और क्या हमारे बोलने से गर्मी कम हो जाएगी, नहीं, बोले इस, और फिर क्या बातें करते ना, इतने सालों में कभी इतनी गर्मी नहीं हुई जितनी इस साल हुई, हाँ फिर ये बात करेंगे, फिर उस पर बातें लंबी चलेगी, वो कहेंगे नहीं 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 फुला 10 साल या 50 साल पहले हुई थी, अब ये सारी बातें बैठकर एक स्टोरिया बन गई। कभी तो कहेंगे बोलो इस साल तो ठंडी बहुत है, अरे ऐसी ठंडी तो कभी नहीं आई थी, अब उस पर सब बातें शुरू हो गई, अरे इसका तो अभी बताओ हमारे ठंडी के तस्करे से क्या गर्मी होने वाली, ठंडी जाने वाली, या गर्मी के तस्करे से क्या गर्मी खत्म होने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला। तो अब वो बातें क्यों कर रहे हो, क्योंकि बोलने का कुछ नहीं है, तो क्या करो, बोले मौसम पर बात करो, या तो फिर हुकूमत पर बात करो, सियासी बात करेंगे, और सियासी बात अगर जमात में है तो मना है, तो घरों पे तो करते हैं। तो ये सारी बातें जो है ये फजूल बातें हैं, क्योंकि इसका मकसद क्या है बोलने का, बोलो, इसलिए खामोश रहो, सबर करो। सबर क्यों दिया है, ये पसीने निकल रहे हैं, सारे लोग बातें कर रहे हैं, तुम खामोश रहो, बोले काम की बात करो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, दावत दो, या सोचो, गौर व फिक्र करो, अल्लाह की कुदरत को सोचो, ये सारे काम है। अगर मकसद नहीं तो फरमाया अपनी जबान को मुलव्वस न करो, उसको छोड़ दो, रुक जाओ, इसकी आदत और मश्क करने की जरूरत है, इसकी आदत और मश्क करने की जरूरत है, इसको नहीं बोलना चाहिए। मैंने इस पर बहुत मश्क की, कितनी भी गर्मी लोग बातें करते चुप, उन्हें तो जो होना है होता रहेगा, अल्लाह बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ कि अल्लाह गर्मी को ठंडक से तू बदल दे, तू हर चीज पर कादिर है, तो हर चीज पर कादिर है, तो अल्लाह ताला कर देगा, अल्लाह ताला कर देगा। मसलन हम जाते हैं मस्जिद में, अब जाहिर बात है मस्जिद में किसी बटन और किसी स्विच को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, गर्मी शिद्दत की है, पंखा चालू नहीं कर सकते, तो क्या अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अल्लाह से दुआ मांगो, तो कोई ना कोई बंदा अल्लाह ताला मस्जिद का भेज देगा और वो खुद आकर बटन चालू कर देगा, क्या भाई आप, मैंने तो उस पर बहुत तजर्बा किया, बस अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और अल्लाह ताला किसी ने मौज़िन आ जाता है, कोई इमाम आ जाता है और बोले चलो, और वो खुद आकर चालू कर दे, बता भी देते भाई ये तुम लोग इस्तेमाल कर सकते। तो ये चीजें है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, कुछ भी हो जाए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, तो इसकी आदत और मश्क करने की जरूरत है। तहिया कर लो कि जबान को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उसको काबू में करेंगे। जब आदमी अल्लाह के लिए तहिया कर ले, इरादा कर ले, इरादा करके अपना काम दुरुस्त करना चाहता है, तो फिर अल्लाह जल्ले शानू की तरफ से मदद भी होती। अल्लाह ताला फरमाते वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह आयत का तर्जमा इस तरह फरमाते हैं कि जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, यानी दीन की मेहनत करते हैं, हम उनका हाथ पकड़कर अपने रास्तों पर ले जाते हैं, हम उनका हाथ पकड़कर जन्नत के रास्तों पर ले जाते हैं। जो दीन की मेहनत कर, देखो याद रखो, दीन की मेहनत का लफ्ज जब बोला जाता था तो हमारे जहनों में सिर्फ ये मौजूदा जो दावत का तरीका है ना, تین دن 40 دن اور نکلنا گش وغیرہ، ہمارے نزدیک یہی لفظ یعنی پورا منظر آ جاتا ہے. یہ جو دعوت کے لوگ جو سن رہے، یاد رکھو جب دین کی محنت ہوتی ہے تو اس میں سب آ گئے. خالی یہی نہیں، اس میں مدارس میں جو علماء کرام درس و تدریس دے رہے ہیں یا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو الف با سکھا رہے ہیں وہ بھی دین کی محنت کر رہے ہیں، اور جو حدیث پڑھا رہے وہ بھی دین کی محنت کر رہے ہیں، جو مسجد میں امامت کر رہا ہے وہ بھی دین کی محنت کر رہا ہے، مؤذن جو اذان دے رہا ہے وہ بھی دین کی محنت کر رہا ہے، اور جو داعی جماعت میں جا رہا ہے وہ بھی دین کی محنت کر رہا ہے. یاد رکھے، کیونکہ ہمارے دماغوں میں ایک ہی بات، دین کی محنت بولے تو بولے موجودہ جو طریقہ ہے وہی، اس کے علاوہ کا طریقہ دین کی محنت سمجھتے ہیں. ہاں یاد رکھو، یہ بہت ذہن میں بٹھا لو کہ دین کی محنت. اس لیے فرا والذین جاہدو سے صرف جماعت میں جانے والے نہیں ہیں، مجاہدہ ہر محنت میں. جو بیچارہ الف با تا بچوں کو پڑھاتا ہے کیا وہ مجاہدہ نہیں کر رہا ہے؟ جاہدو نہیں کر رہا ہے؟ جا کے ذرا بچوں کو پڑھاؤ کہ بچے حرکتیں کیسی کرتے ہیں، غصہ استاد کو کتنا آ رہا ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ پیار کر رہا ہے، اس کو پڑھا رہے ہیں، اس کو کیا کیا سمجھا رہے ہیں، کہ قرآن سکھا رہے ہیں، کوئی حدیث پڑھا رہے ہیں، تو یہ کیا مجاہدہ نہیں کر رہے؟ تو کیا صرف اسی کو مجاہدہ ہے کہ بس وہ جماعت میں جائیں گے تو ہی مجاہدہ؟ یاد رکھو عموم ہے، یہ بھی مجاہد ہے. تو دین کی محنت کرنے والے کو کیا کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے، ہاں یہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے ساتھ ہو تو دین کی محنت ہوگی، اگر اس میں کوئی غرض ہے تو پھر دین کی محنت نہیں. اب جو سیلری مل رہی ہے تو بولے غرض ہے؟ نہیں، سیلری تو انہوں نے اپنا وقت دیا ہے، حالانکہ وہ سیلری سے کیا ضرورتیں پوری ہوتی ہیں؟ اللہ اپنی قدرت سے پوری کرتا ہے. اس لیے اسے اسے علماء گزرے ہیں جن کا مقصد سیلری لینا نہیں تھا، محنت کرنا تھا. محنت کرتے گئے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. تو یاد رکھے دین کی محنت جو بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے جاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اس آیت میں ہدایت سے مراد اراءت الطریق نہیں ہے بلکہ ارشاد الی المطلوب ہے. دیکھو کوئی بھی راستے میں چل رہا ہے اور آپ کو آپ سے پوچھا کسی نے کہ بھائی بتاؤ فلاں جگہ جانے کا راستہ کدھر ہے، تو آپ نے اس کو بتا دیا دیکھو یہاں سے سیدھا جانا، پھر لیفٹ جانا، پھر رائٹ جانا، دائیں بائیں جا کر کہاں سیدھا جاؤں گے تو آپ کسی سے پوچھ لینا تو وہ مکان آ جائے گا. ایک تو یہ اراد یعنی دکھانا، اس کو بتا دیا، اور ایک اسال مطلوب اس سے کہا کہ بھائی ایک کام کر تو میری گاڑی میں بیٹھ جا، اور اس کو سیدھا لے جا کر اس ڈور پر چھوڑ دیا. اس کو کہتے اسال مطلوب. تو فرمایا اوپر کی آیت کا ترجمہ کیا ہے، ہم سیدھا اس کو جنت کے راستے پر لے جا کر چھوڑ دیں گے، سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اراءت الطریق نہیں کہ ہم راستہ دکھا دیں گے، ہاں یوں کرو یوں کرو، ہو سکتا ہے اس میں بھٹک بھی سکتا ہوں. تو اس لیے فرمایا ہدایت سے مراد یہاں صرف راستہ دکھانا نہیں ہے، ہدایت سے مراد راستے پر لے جانا ہے ہاتھ پکڑ کر، یہی ہدایت. ہم اس کو ہدایت دیں گے، ہدایت کا معنی یہ نہیں کہ دکھا دیا، اللہ کتنا یعنی ہاتھ پکڑ کر منزل تک لے جاتے ہیں. لیکن کوئی ارادہ تو کرے، قدم تو بڑھائے. ارادہ کرنے کے بعد پھر وہی سمجھاتے ہیں کہ کیا بولنا چاہیے. ارادہ کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، اللہ کیا بولو اس پر دیکھو کس سے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے کہ کیا کرنا. ارادہ کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ یہ تو ایسا موقع آیا جہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، میں کیا کروں، کیا الفاظ بولوں، کیسے بولوں، تو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے دل پر بات کہیں بھی. تو اب دیکھو یہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال رہے، کیا ہوا، ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھا دیا، یعنی زبان پر ایسی بات ڈال دی تم بولو تو سیدھا جنت والا راستہ لیا نا. اب اس پر ایک قصہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور جھوٹ سے پرہیز. دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جبکہ اہل مکہ نے اعلان عام کر رکھا تھا کہ جو شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا العیاذ باللہ زندہ یا مردہ اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں کہ آج بھی 100 اونٹ کی کیا قیمت ہوگی، اس زمانے میں کیا ہوگی؟ اتنا بڑا انعام مقرر کر رکھا تھا اور چاروں طرف ہر کارے دوڑا رکھی تھی، یعنی اونٹ دوڑا رکھے تھے، اور چاروں طرف جاسوس بکھرے ہوئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپتے چھپاتے جا رہے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ چھپتے چھپاتے جا رہے تھے. راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کوئی پرانا جاننے والا مل گیا جو کسی اور شہر کا رہنے والا تھا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر دل عزیز تھے، محبوب تھے لوگوں میں اور تاجر بھی تھے، اس لیے ان کے تعلقات لوگوں سے زیادہ تھے. بہرحال وہ شخص آپ سے مل کر بہت خوش ہوا اور پھر پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ظاہر بات پوچھتا ہے، چونکہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں تھا، اس لیے آپ کے بارے میں پوچھا. اب اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سچ بولتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان حالات میں بتانا خطرناک ہے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے دشمنوں تک خبر پہنچ جائے اور وہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دے، اور اگر نہ بتائے تو یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ تو براہ راست سوال کر رہا ہے، اور اگر یہ کہے کہ یہ کوئی اور آدمی ہے تو جھوٹ ہو جائے گا. جی تو ظاہر ہے کہ وہ تو صدیق اکبر تھے، جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے، جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جواب مانگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب القا ہوا، دل میں آیا کہ یوں کہہ دو ہادن یہدی بھی یہدینی سبی یہدینی سبیل، ہادن یعنی ہادی ہے، یہ میرے رہنما ہے، میرے گائیڈ ہے، راستہ بتانے والے ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں. اور واقعتاً جنت کا راستہ، آخرت کا راستہ، اللہ کی طرف جانے کا راستہ دکھاتے تھے. اب اس کے دو مطلب ہو گئے، یعنی راستہ دکھانے یعنی یہ ہم لوگ سفر کر رہے تو سفر کا راستہ دکھانے والا، یہ بھی ہو گیا، اور دوسرا مطلب کہ آخرت کا راستہ دکھانے والا، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ آخرت کا راستہ دکھا رہے. اور واقعتاً آخرت کا تو ہادی ہوئے، راستہ دکھانے والے ہوئے. اب اس کے سمجھ میں تو آیا دنیا کا راستہ، انہوں نے مراد لیا آخرت کا راستہ، تو سچ بھی ہو گیا اور کام بھی بن گیا. جی سبحان اللہ، تو دیکھو کیسے اللہ تعالی نے بات ڈال دی. دیکھیے کہ اس وقت جبکہ جان پر بنی ہوئی ہے، موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے، اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے کوئی کلمہ حد سے گزرا ہوا نہیں نکلا. جب کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنا دیتا ہے تو پھر انہی کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ اس موقع پر کیا کہا جائے. اسی طرح حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ کا جھوٹ سے بچنا، دیکھو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمت دیتی. اور واقعتاً جب انسان اپنے آپ کو جب کنٹرول کرتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر ہر جگہ پر واقعتاً ہدایت دیتے ہیں. ہدایت یہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہدایت کے بہت راستے ہیں، جو پہلے ہم نے پڑھا نا، جتنے انسان کے سانس ہے اتنا ہی اللہ تک جانے کے راستے ہیں، یعنی ہدایت کے راستے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، 1857 کی جنگ آزادی میں، اس وقت ہندوستان کی آزادی کی جنگ سب سے پہلی لڑی گئی تھی 1857 میں، اور پھر آزاد ہوا ہے 1947 میں، تو 100 سال پہلے محنت کی تھی. 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تھا. انشاءاللہ وہ آزادی کی بھی جنگ عجیب عجیب تھی، وہ بھی آئے گی کبھی تاریخ اس کے سامنے، ہسٹری کہ کیا کیا اس میں قربانیاں دی ہے. تو فرمایا کہ جنگ آزادی میں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا، کیونکہ انگریز اس سے پہلے آ چکے تھے اور جم گئے تھے، چنانچہ انگریزوں کی طرف سے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے. اس زمانے پر چوراہوں پر پھانسیاں لٹکی ہوئی تھی، چوراہے یعنی جو جنکشن ہوتے، چار راستے ہوتے، تو ہر راستوں پر ایسے چوراہوں پر پھانسیاں لٹکی ہوئی تھی، اور جو بھی پکڑا جاتا سیدھا اس کو سب کے سامنے پھانسی. تو اس میں کئی علماء پھانسی پر چڑھ گئے اس وقت، چنانچہ پولیس ان کو تلاش کر رہی تھی. حضرت مولانا دیوبند کی چھتہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے، لنگی और मामूली सा कुर्ता पहनती थी। कोई शख्स देखकर यह पता नहीं लगा सकता था कि ये कोई बड़े आलिम होंगे। पुलिस वाले तलाश करते हुए उस छत्ता की मस्जिद में पहुंच गए। पुलिस वालों ने ये सोचा कि जब इन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो कोई बहुत बड़े आलिम होंगे। बड़ी शान और शौकत के साथ जुब्बा कुप्पा और दस्तार यानी अमामा लगाए हुए होंगे, मगर हजरत मौलाना छत्ता की मस्जिद में लुंगी पहने बैठे थे। उन पुलिस वालों के जहन में ख्याल भी नहीं आया कि मौलाना मोहम्मद कासिम साहब है। वो समझे कि मस्जिद का कोई खादिम है, कोई मौजिन होगा, कोई खिदमत करने वाला, सफाई करने वाला होगा। चुनांचे उन्हीं से जाकर पूछा कि मौलाना कासिम साहब कहाँ है, तो हजरत मौलाना अपनी जगह से खड़े हुए और जरा सा हट कर फरमाया कि अभी तो यहां थे। देखा, झूठ भी नहीं हुआ और वाकई थे ना, वो वहीं बैठे थे और थोड़ा हट गए, फिर मैं अभी यहां थे। अब वो क्या समझा कि हो सकता है हमारे आने से पहले यहां हो। वो तो यही समझा हमारे आने से पहले यहां होगा, हमारे आते ही शायद चला गया, वो तो ये समझे, लेकिन इन्होंने तो ये था अभी यहां थे। देखो अल्लाह ताला कैसे सुझाते हैं, सुभान अल्लाह, अजीब बात है। तो फरमाया अभी यहां थे, क्योंकि अगर बता दे कि मैं कासिम हूं तो पकड़े जाएं, और अगर झूठ बोले तो वो गवारा नहीं। तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद हुई कि जहन में जवाब इल्का फरमा दिया। चुनांचे वो लोग फिर इधर उधर तलाश करके वापस चले गए। ऐसे ही हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है कि उन्होंने भी आजादी की के लिए जो जंग लड़ी गई थी उसमें शरीक थे, वो भी पकड़े गए और मजिस्ट्रेट की अदालत में बुलाए गए। जब उनके तुम्हारे खिलाफ इल्जाम ही है कि तुम्हारे पास ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, तो हजरत ने कहा कि हां, तो अब अगर ये कहे कि नहीं है तो झूठ होता है, और अगर सच बोले कि है तो फांसी का तख्ता आता है। हालांकि ऐसे मौका पर जब आदमी की जान पर आ जाता है तो बाज औकात इंसान झूठ बोल देता है और बोलने की इजाजत भी हो जाती। हजरत के हाथ में तस्बीह थी, आपने वो तस्बीह ऊपर करते हुए फरमाया कि हमारे लिए तो ये है, तस्बीह को बताया, फरमाया ये है हमारा हथियार, ये है तस्बीह। तो ये भी अभी गुफ्तगु हो ही रही थी कि इतने में एक देहाती भी आ गया और वो मजिस्ट्रेट से कहने लगा, अरे तुम किसको पकड़ लाए, ये तो हमारी मस्जिद का मोजिन है। ये तो हमारी मस्जिद का मोजिन है, यानी मस्जिद यानी मस्जिद। अब बेचारे को मस्जिद बोलना भी नहीं आता तो मस्जिद बोलता था, और मौजिन बोलना नहीं आता तो मोजिन कहता था। चुनाचे मजिस्ट्रेट ने जब देखा कि ये तो हाथ में तस्बीह लिए घूम रहा है और देहाती भी ये कह रहा है कि ये तो मौजिन है, तो उसने आपको छोड़ दिया। अल्लाह जल्ल शानु की तरफ से इस तरह मदद होती है जी, इस तरह मदद होती है। बहरहाल जब आदमी इरादा कर ले कि मैं अल्लाह तक की दी हुई इस मशीन को सही इस्तेमाल करूंगा, यानी जबान को, तो अल्लाह ताला उसकी फिर मदद फरमाते हैं। तो देखो जबान से बहुत सारे गुनाह होते, जबान से झूठ भी निकलता है तो झूठ का गुनाह, गिबत होती है गिबत का गुनाह, तकलीफ होती है मुसलमान को तो इज़ाए मुस्लिम का गुनाह है ना, किसी का दिल दुखता है तो दिल के तोड़ने का गुनाह। तो देखो जबान से कितना गुनाह हुआ, और सब कबीरा बड़े बड़े गुनाह। इसलिए जबान ही को कंट्रोल कर ले तो दिल भी नहीं दुखेगा किसी का, और दिल दुखाना बैतुल्लाह को भी ढाने से ज्यादा बुरा है। तो इसलिए जबान को बहुत इस्तेमाल करना है संभाल कर, वरना इस जबान को आदत बनाओ। इससे पहले ही बताया था कि हम अल्लाह की बड़ाई बोलना सीख ले, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को बोलना सीख ले, कुछ 10-15 मिनट की बात सीख लेंगे तो अल्लाह दूसरी बातें हमारे लिए खोलता जाएगा। इसलिए इससे दावत देना भी आसान होगा और खुद ब खुद हमारी गीबतें खत्म हो जाएगी। देखो गीबत खत्म हो ही नहीं सकती जब तक के जबान से तुम दावत देना नहीं सीखोगे। गीबत उसी मजलिस में होती है जिस मजलिस में किसी को कोई दीन की बात करना नहीं आता, तो क्या करते, हालात हाजरा पर बात शुरू कर देते, और कुछ नहीं है तो रिश्तेदारों में से किसी को एक को पकड़कर बेचारे की उसकी सब ऊपर से नीचे तक सब खोल डालते उसके अयुब को। हाँ, तो इसके लिए जबान को बहुत इस्तेमाल संभाल कर करना है। ये जबान जन्नत में ले जाने वाली है, ये जबान का गलत इस्तेमाल हुआ तो जहन्नम में ले जाने वाली। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और जबान को भी कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए। उसकी तौफीक के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। या तो फिर जबान को अल्लाह के जिक्र से तरोताजा रखो। और अल्लाह का जिक्र का मतलब क्या, सुभान अल्लाह हर वक्त पढ़ते रहेंगे या कलमा पढ़ते रहेंगे? नहीं, यानी दीन की बातें हर वक्त किसी को समझा रहे हैं, किसी को किसी यानी कभी दीन की बात पढ़ रहे हैं, कभी कुरान की तिलावत में है, कभी अल्लाह के नाम में है, तो कभी अल्लाह के कलाम में है, तो ये सारी चीजें करते रहना। क्योंकि जबान तो बोलने के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी है, लेकिन इस्तेमाल तो होगी, अगर उसको सही इस्तेमाल न किया तो गलत इस्तेमाल होगी। जबान तो कह रही है कि देखो मेरा काम है बोलना, इस्तेमाल होना, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको अगर सही इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें जन्नत में ले जाने वाली बनाऊंगी, और अगर तुमने मुझे गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हें जहन्नम में ले जाऊंगी। तो जबान कह रही है हमसे कि मेरा काम है इस्तेमाल होना, तुम जैसा इस्तेमाल करो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं, तुम अगर अल्लाह का लफ्ज जबान से निकालोगे तो हमें तो अल्लाह बोलेंगे, और अगर तुम इसके जरिए से गाली निकालोगे तो गाली बोलेंगे। तो इसलिए फरमाया कि इंसान का दिल असल है, नबियों ने दिलों पर मेहनत की कि इस दिल को बना लो, क्योंकि दिल पहले फैसला करता है फिर जबान बाद में बोलती है। दिमाग का और दिल का कनेक्शन है, जबान तो क्या करती है, टाइपिंग करती है ना। जैसे बताया था कि दिमाग जो सोचता है और दिमाग को जो जाता है वो कहां से जाता है, उसका दिल उसका बादशाह है, वो कहता है ये बोलना है तो जबान बोलना शुरू कर देती, प्रिंट कर देती है सब। तो इसलिए फरमाया दिलों पर मेहनत, सारे नबियों ने आकर दिलों पर मेहनत की कि दिल बन गया तो उसका एक एक उज्व बन जाएगा, आंख बन गई, कान बन गए, और इस तरीके जबान बन गई, हाथ बन गए, सब कुछ। और अगर दिल बिगड़ गया तो फिर आंखें भी बिगड़ी, कान भी बिगड़े, कान से गीबत सुनेगा, जासूसी सुनेगा, और जबान से और आंखें सब चीजें बिगड़ जाएगी। इसलिए दिलों पर मेहनत है, और दिलों पर मेहनत कैसे होगी का दिल वालों से, दिल वालों के पास बैठो, अहले दिल के पास बैठो, जिन्होंने अपने दिल बना लिए हैं उसी को कहते हैं अल्लाह वाले, उन्हीं को कहते हैं रूहानी डॉक्टर। उनके पास बैठोगे तो उनके जरिए से हमारे दिल बनेंगे, हमारे दिल बनेंगे तो हमारे आजा सारे बन जाएंगे। अल्लाह ताला हमें दिलों के बनाने की तौफीक अता फरमाए। तो मुराकबा कर।